ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व के विभिन्न भागों में तनाव, अशांति और अस्थिरता की स्थिति है। ऐसे में योग शांति का मार्ग दिखाता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करते हुए प्रधानमंत्री ने विश्व समुदाय से योग दिवस को मानवता के लिए 2.0 की शुरुआत के रूप में मनाने का विशेष आह्वान किया, जहाँ आंतरिक शांति वैश्विक नीति बने।
योग से हमें शांति की दिशा मिलती है। मैं विश्व समुदाय से आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक आग्रह करूंगा, लेट दिस योगा डे मार्क द बिगिनिंग ऑफ योगा फॉर ह्यूमैनिटी 2.0 वेयर इनर पीस बिकम्स ग्लोबल पॉलिसी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष योग दिवस का विषय एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग स्मरण कराता है कि किस प्रकार वर्तमान और भावी पीढ़ियों का सुखद भविष्य सुनिश्चित करने के लिए पूरा विश्व एकजुट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वैश्विक समुदाय अब योग के प्रति अधिक सम्मान रखता है और महाद्वीपों के लोग इससे लाभ उठा रहे हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने विश्व मंच पर योग को बढ़ावा देने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला। राष्ट्रपति आज देहरादून में पुलिस लाइन में आयोजित योग शिविर को संबोधित कर रही थी।
योग पूरी मानवता की साझा धरोहर बन चुका है। ये भारत की सॉफ्ट पावर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण है। भारत की पहल पर योग के प्रति विश्व समुदाय का सम्मान बढ़ा है और दुनिया भर के लोग इससे लाभान्वित हो रही है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों, नेताओं और अधिकारियों ने अनेक लोगों के साथ योग किया और स्वास्थ्य तथा ध्यान के महत्व पर जोर दिया। संसद परिसर में कार्यक्रम का नेतृत्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कर्तव्य पथ पर समारोह में भाग लिया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने नेहरू पार्क में विभिन्न देशों के राजदूतों के साथ योग किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखपति दीदियों के साथ पूसा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 19 जून तक 4.86% बढ़कर 5,45,000 करोड़ रुपए हो गया। पिछले वर्ष इसी अवधि में ये लगभग 5,19,000 करोड़ रुपए था। हालांकि शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में 1.39% की मामूली गिरावट देखी गई। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इनोवेटिव प्रोजेक्ट स्टार्टअप चैलेंज शुरू किया है। इसका उद्देश्य भारत के रूफटॉप सौर और वितरित ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र में तेजी लाना है। चयनित प्रवर्तक 2,30,00,000 रुपए के कुल पुरस्कार पूल के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। विजेताओं को इंक्यूबेशन सहायता, पायलट कार्यान्वयन के अवसर और डोमेन विशेषज्ञों और निवेशकों से मार्गदर्शन भी मिलेगा। संकटग्रस्त ईरान से भारतीयों की स्वदेश लाने के अभियान ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत आज तड़के तुर्कमेनिस्तान के अशगाबाद से विशेष विमान नई दिल्ली पहुंचा। इसके साथ ही अब तक 517 भारतीय स्वदेश लौट चुके हैं। ईरान ने कहा है कि इसराइल के हमले जारी रहने के बीच वो अपने परमाणु कार्यक्रम के भविष्य पर विचार विमर्श नहीं करेगा। कल जेनेवा में फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक के बाद ईरान ने यह टिप्पणी की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि भारत के साथ वर्ष 2030 तक दीर्घावधि सहयोग की कार्ययोजना जल्दी ही पूरी हो जानी चाहिए। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक फोरम को कल संबोधित करते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने इसकी घोषणा की। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच के पहले दिन कल भारत ने 3 विकेट पर 359 रन बनाए। लीड्स में कप्तान शुभमन गिल 127 और उपकप्तान ऋषभ पंत 65 रन से आगे खेलेंगे। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। FIH हॉकी प्रो लीग में भारत की पुरुष और महिला टीम का सामना बेल्जियम से होगा। ये मुकाबले आज और कल खेले जाएंगे। और भारत की नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता जीत ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।